हरे कृष्णा जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी
गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी
जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोकुल नंद राधे
राधा गोकुल नंद राधे
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय 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 जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिस् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम बारहवां स्कंद तेरहवां अध्याय श्रीमद् भागवत की महिमा श्लोक संख्या 13 प्रौष्ठपद्याम पौर्णमास्याम हेमसिंहासमन्वितम् ददाति यो भागवतम् स याति परमां गतिम् प्रौष्ठपद्याम पौर्णमास्याम हेमसिंहासमन्वितम् ददाति यो भागवतम् स याति परमां गतिम् प्रौष्ठपद्याम भाद्रमास में पौर्णमास्याम पूर्णमासी के दिन हेम सिंह सोने के सिंहासन पर समन्वितम आसीन ददाति भेंट के रूप में देता है। यह जो भागवतम श्रीमद् भागवत को सह वह याति जाता है परमाम परम गतिम गंतव्य को। अनुवाद और तात्पर्य। यदि कोई व्यक्ति भाद्रमास की पूर्णिमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखना चाहिए क्योंकि यह समस्त वांग्मय का शिर भौर है। भाद्रमास की पूर्णमासी को वांग्मय का राजा रूप सूर्य सिंह राशि पर स्थित होता है और ऐसा दिखता है मानो राज सिंहासन पर बैठाया गया हो। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि में सर्वोच्च स्थिति पर होता है। इस तरह मनुष्य बिना किसी बंधन के इस परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत की पूजा कर सकता है। तो अपने अपने घरों में या आश्रम में जहां भी आप हैं मेरे पीछे आप दोहराइएगा। यदि कोई व्यक्ति भाद्रमास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रख कर श्रीमद् भागवत का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत इस बहुत ही रसमय और महत्वपूर्ण ग्रंथ में 12 स्कंध हैं और 12वें स्कंध में 13 अध्याय हैं। इस 13 अध्याय में 23 श्लोक हैं। इस 12वें अध्याय तक पहुंचने के पहले इस 13वें अध्याय तक पहुंचने के पहले शुकदेव गोस्वामी संपूर्ण श्रीमद् भागवत का प्राय वर्णन कर चुके हैं। 12वें स्कंद में जब वो छठे अध्याय पर पहुंचते हैं तो उस समय वो संपूर्ण श्रीमद् भागवत के सार का वर्णन करते हैं, बल्कि आदेश अपना देते हैं। सार तो सूत गोस्वामी बाद में देते हैं, शुकदेव गोस्वामी अपने अंतिम उपदेश परीक्षित महाराज को देते हैं और परीक्षित महाराज निर्भय होकर अपने आने वाले मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी उस स्थान से प्रस्थान करते हैं, चले जाते हैं। एक बार श्रीमद्भागवत का उपदेश उन्होंने राजा परीक्षित को दे दिया, उनका काम समाप्त हो गया। अब श्रीमद्भागवत का असर, श्रीमद्भागवत अपना असर राजा परीक्षित के हृदय में करने ही वाला था और कर चुके थे। तो सुखदेव जी वहाँ से निकल पड़े और राजा परीक्षित उस नाग, उस सांप की प्रतीक्षा कर रहे थे जो कि उनके मृत्यु का कारण होना था। आपको याद होगा कि प्रथम स्कंध में ही वर्णित है कि शमिक ऋषि के जो पुत्र थे उन्होंने, हालांकि वो बच्चा था श्रृंगी, उस बच्चे ने राजा परीक्षित को सांप शाप दिया था कि वो 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु होने वाली है। तो राजा परीक्षित ने अपना देह त्यागा जब तक्षक सांप ने आके उनको डस लिया। और उसके बाद श्रील सुत गोस्वामी इस कथा को आगे जारी रखते हैं। वो वैदिक शास्त्रों के विभिन्न अंगों का वर्णन करते हैं और फिर 12वें अध्याय में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सारांश देते हैं और 13वें अध्याय में, जो कि अंतिम अध्याय है श्रीमद् भागवत का और इस 12वें स्कंद का, इसमें सुत गोस्वामी प्रमुखतः 5 या 6 विषयों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो विभिन्न पुराण हैं उनका विस्तार कितना है, अर्थात कितने श्लोक हैं उनमें, इसका। दूसरी बात वो वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवत में कथा वस्तु क्या है, अर्थात किन विषयों के ऊपर प्रमुखतः यहाँ पर वर्णन है इस ग्रंथ में। तीसरी बात कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ का उद्देश्य क्या है। चौथी बात कि जब ये ग्रंथ भेंट रूप में दिया जाता है तो इसकी विधि क्या होती है, और पांचवा कि इसकी महिमा क्या होती है, और अंत में कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से, कीर्तन करने से, इसको इस ग्रंथ को गंभीरता से स्वीकार करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, इसका भी वर्णन पाया जाता है। तो प्रारंभ में श्रील सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए ऋषियों को बतलाते हैं कि 18 पुराण हैं, प्रमुख पुराण, महापुराण जिसे कहते हैं। और सुत गोस्वामी क्रमशः ये बताते हैं कि हरेक पुराण में कितने श्लोक हैं, जैसे ब्रह्मांड, ब्रह्मा पुराण है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण इत्यादि। उनमें से वो श्रीमद् भागवत का उल्लेख भी करते हैं। जब सारे 18 जो पुराण हैं उनका उल्लेख कर लेते हैं विस्तार सहित, फिर अंत में पुनः श्रीमद् भागवत का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि ये सारे 18 पुराणों में लगभग 4 लाख श्लोक हैं और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में ये कहते हैं कि यहाँ पर 18 पुराणों का उल्लेख करते समय श्रीमद् भागवत का उल्लेख भी हुआ, परंतु इसके बाद पुनः श्रीमद् भागवत का उल्लेख क्यों किया सुत गोस्वामी ने? अन्य पुराणों के नाम दोहराए नहीं सुत गोस्वामी ने, केवल श्रीमद् भागवत का नाम दोहराया, तो ऐसे क्यों? तो वो बतलाते हैं कि इसके पीछे कारण ये है कि जैसे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में जब सूत गोस्वामी अनेक अवतारों का उल्लेख करते हैं जिनमें श्री कृष्ण भी हैं, और इन अवतारों का उल्लेख करने के बाद पुनः श्री कृष्ण का उल्लेख करते हैं जब वो कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहने का तात्पर्य ये है कि यद्यपि अवतार अनगिनत हैं, असंख्य हैं, और इनमें से जो प्रमुख अवतार थे उनका उल्लेख मात्र सूत गोस्वामी ने किया है पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में, उनमें श्री कृष्ण भी सम्मिलित हैं क्योंकि श्री कृष्ण भी अवतीर्ण हुए थे इसलिए उनको भी अवतार कहा जाता है। परंतु वास्तव में श्री कृष्ण तो अवतारी हैं, अवतारों के उद्गम हैं, सबसे महत्वपूर्ण अवतार हैं। इसलिए यद्यपि अनेक अवतारों के उल्लेख के बीच में श्री कृष्ण का भी नाम सम्मिलित है, फिर भी इस श्रृंखला के अंत में पुनः श्री कृष्ण का नाम वो लेते हैं, ये स्थापित करने के लिए कि श्री कृष्ण का स्थान विशेष है। इन समस्त अवतारों में श्री कृष्ण का स्थान अद्वितीय है क्योंकि उन्हीं से सारे अवतारों का उद्गम होता है। ठीक उसी प्रकार से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि 18 महापुराण हैं, उनमें से श्रीमद् भागवत भी एक है, फिर भी श्रीमद् भागवत अन्य पुराणों की तरह है, नहीं है। श्रीमद् भागवत का स्थान अन्य पुराणों की तुलना में कहीं ऊंचा है और इसलिए बहुत विशेष है। और साथ साथ अन्य पुराणों का उल्लेख करने का कारण ये है कि जब किसी राजा का वर्णन होता है तो राजा के साथ साथ उसके जो सहायक होते हैं, मंत्री होते हैं, उनका भी उल्लेख होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत जो है ये राजा है संपूर्ण शास्त्रों में और विशेष रूप से पुराणों में। जैसे कि जिस श्लोक का पठन हमने आज किया 13वें श्लोक का, उसमें भी इसी बात की पुष्टि की गई है कि श्रीमद् भागवत पुराणों में से या शास्त्रों का राजा है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत के साथ साथ अन्य पुराणों का उल्लेख भी किया जाता है। तो श्रील जीव गोस्वामी यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं कि वास्तव में इतिहासों को भी मिलाकर 5.25 लाख श्लोक होते हैं। इतिहास अर्थात महाभारत है, वाल्मीकि रामायण है इत्यादि, तो इन सब को मिलाकर लगभग 5.25 लाख श्लोक हो जाते हैं। तो इस 13वें अध्याय के प्रारंभ में पुराणों के और इतिहासों के विस्तार का उल्लेख है और उसके बाद कथा वस्तु। तो कथा वस्तु अर्थात किन विषयों की चर्चा यहाँ पर हुई है, यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं आदि मध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम हरिलीला कथा व्रात अमृता निंदितस अमृता अमृतांदित सत्सुरम अमृत आनंदित सत्सुरम। तो कहते आदि मध्य अवसानेषु, तो प्रारंभ में आदि, मध्य मतलब बीच में, अवसानेषु और अंत में इस श्रीमद् भागवत में क्या वर्णित है, वैराग्य आख्यान संयुतम। तो श्रीमद् भागवत ऐसे वैराग्य की कथाओं से भरा हुआ है, वैराग्य आख्यान संयुतम। और किन चीजों से भरा हुआ है, क्या श्रीमद् भागवत में केवल वैराग्य की कथा है और अन्य किसी चीज की कथा नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो किस चीज किस विषय का वर्णन यहां पर है, हरि लीला कथा। ये जो हरि लीला कथा है और व्रात, हरि लीला कथा का वर्णन यहां पर है जो कि अमृत आनंदित, जो अमृत जो ये अमृत है इस कथा का, इसको आनंद ये प्रदान करता है कि इनको सत सुरम, सत अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, और सुरम अर्थात जो देवगण हैं। तो इस श्रीमद् भागवत में दो विषय प्रमुख हैं, एक है वैराग्य और दूसरा है हरि लीला कथा, जो कि अमृत है। और ये अमृत का आनंद भक्तों को और देवताओं को प्राप्त होता है। साथ साथ इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कैवल्य एक प्रयोजनम, इसका प्रयोजन है केवल कृष्ण भक्ति और कोई नहीं। तो ये मुख्य विषय है। और तो ऐसे इन तीन विषयों की चर्चा करने के बाद अब वो इस 13वें श्लोक में आते हैं, जिसका पठन इस प्रवचन के प्रारंभ में मैंने किया। तो इसमें सूत गोस्वामी कहते हैं, प्रौष्ठ पद्याम अर्थात भाद्र महीने को ये कहते हैं। तो भाद्र महीने के पूर्णमासी अर्थात पूर्णिमा, तो पूर्णिमा ये संक्षिप्त शब्द है पूर्णमासी। तो पूर्णमासी भाद्र पूर्णिमा के दिन जब कोई व्यक्ति ददाति यह भागवतम, ये श्रीमद् भागवतम को देता है, किसी व्यक्ति को भेंट में देता है, और कैसे देता है? हेम सिंह समन्वितम, उस स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाकर श्रीमद् भागवत को किसी को भेंट देता है, तो जो भेंट देने वाला व्यक्ति है स याति परमाम गतिम, तो निश्चित ही परम गति को प्राप्त करता है। और यद्यपि इस श्लोक में नहीं लिखा गया है ये, परंतु जो इस ग्रंथ को पाता है उसके लिए भी निश्चित है कि वो परम गति की प्राप्ति करेगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो किसी आने वाले जन्म में। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर इसलिए बिठाना चाहिए क्योंकि वो वांग्मय का राजा है। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च ग्रंथ है। और सूर्य इस समय सिंह राशि में रहता है, और ऐसे लगता है कि वो सर्वोच्च स्थिति में है। इसलिए इस समय हमें श्रीमद् भागवत की उपासना करनी चाहिए। तो इस विषय पर हम पुनः आएंगे, परंतु आने वाले जो श्लोक हैं इनमें से थोड़े महत्वपूर्ण श्लोकों का उल्लेख भी मैं आज करना चाहूँगा। अब अंतिम विषय जो है कि श्रीमद् भागवत को स्वीकार करने का, उसके बारे इसके श्री भागवत का श्रवण करने का, कीर्तन करने का लाभ क्या होता है? तो 14वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे यावत् भागवतम् नैव श्रूयते मृतसागरम्। राजन्ते तावत् अन्यानि, अन्य जो शास्त्र हैं तावत् उस समय तक, राजन्ते राज करते हैं या चमकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, यावत् जब तक पुराणानि सताम गणे अर्थात भक्तों की सभा में। तो अन्य जो पुराण हैं वो तब तक महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं यावत् जब तक भागवतम न एव श्रूयते, जब तक श्रीमद् भागवतम नहीं सुना जाता है। लेकिन जब भागवत सुना जाता है तो अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो पुराण हो या अन्य कोई भी ग्रंथ हो, वो फिर बहुत ही निम्न स्तर के लगने लगते हैं तुलनात्मक दृष्टि से। क्यों? क्योंकि अमृत सागरम, क्योंकि भागवत जो है ये अमृत का सागर है। और फिर 15वें अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण बात सुत गोस्वामी कहते हैं, ये बहुत एक प्रसिद्ध श्लोक है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रते क्वचित्। सर्व वेदांत सारम ही, ये संपूर्ण वेदांत दर्शन का सार है। क्या? ये श्रीमद् भागवतम, श्री भागवतम इष्यते। इष्यते का मतलब है कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है कि ये श्रीमद् भागवत संपूर्ण वेदांत दर्शन का सार है। तद रसामृत तृप्तस्य, तो जिसका हृदय तृप्त हो चुका है इस श्रीमद् भागवत के रस के अमृत का पान करने से, न अन्यत्र स्याद रथि क्वचित, तो अन्य किसी ग्रंथ के प्रति कैसे उसके हृदय में कभी भी आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, ये संभव नहीं है। तो श्रीमद् भागवत एक रस शास्त्र है, दिव्य रसों का वर्णन इस शास्त्र में पाया जाता है। इसलिए जो रसिक भक्त हैं विशेष रूप से, वो इस ग्रंथ में अधिक रुचि लेते हैं, और जो रसिक भक्तों की तरह ही रसिक बनना चाहते हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो इस ग्रंथ का नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन मनन करें। और फिर और एक महत्वपूर्ण श्लोक 16वें अध्याय में जो भी बहुत प्रसिद्ध है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभुः पुराणानाम इदं तथा। अब तुलना की जा रही है श्रीमद् भागवत की अन्य पुराणों से। निम्न गानाम यथा गंगा, निम्न गानाम, निम्न मतलब नीचे की ओर, गाना मतलब जाने वाली, तो नदियों को निम्न गानाम कहते हैं क्योंकि वो पहाड़ों से उत्पन्न होकर फिर पहाड़ों से नीचे चल के समतल जमीन पर चलती हैं, बहती हैं और अंततः समुद्र में मिल जाती हैं। तो निम्न गानाम, तो नदियों में यथा गंगा, जिस तरह से गंगा श्रेष्ठ है, देवानाम जितने भी देव हैं उनमें से जिस प्रकार अच्युत या श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवानाम यथा शंभुः जिस प्रकार वैष्णवों में से शंभु या शिवजी श्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से तथा पुराणानाम इदम्, समस्त पुराणों में से ये श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से श्रीमद् भागवत की महिमा का गान सुत गोस्वामी करते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानं प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यम एकममलम ज्ञानम परम गीयते, तो तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तत् श्रवण सुपठम विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। तो सुत गोस्वामी कहते हैं ये श्रीमद् भागवतम जो है पुराणम अमलम, ये अमल पुराण है जिसमें कोई मल नहीं है। मल क्या होता है? भौतिकता, भौतिक विचार या भौतिक मानसिकता, ये मल माना जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से। तो अन्य कितने सारे शास्त्र हैं, जैसे कर्म कांडीय शास्त्र हैं, ज्ञान कांडीय शास्त्र हैं, और जो भले कर्म कांडीय शास्त्र न भी हों उनमें भी थोड़ा बहुत कर्मकांड ज्ञान कांड का मिश्रण यहां वहां पाया जाता है। परंतु इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ऐसे किसी मल का लेश मात्र भी नहीं पाया जाता है, तो ये अमल पुराण कहलाता है। यत वैष्णवानाम प्रियम, ये वैष्णवों के लिए बहुत प्रिय है। यस्मिन पारमहंस्यम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। तो ये किस तरह का ग्रंथ है? ये गीयते, ये गान करता है। किस चीज का गान करता है? एकम अमलम ज्ञानम परम, एक ऐसे ज्ञान का गान करता है जो कि परम है, जो कि अमल है और जो एक है, अद्वितीय है। यस्मिन पारमहंस्यम, जो परम हंसों के लिए प्राप्त करने योग्य है, जो परमहंसों द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसे ज्ञान का एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते, इसका ज्ञान गान होता है श्रीमद् भागवत में। तत्र मतलब इस ग्रंथ में ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। नैष्कर्म्यम अर्थात जो जिस कर्म में कोई भौतिक फल नहीं होता, ऐसे नैष्कर्म के साथ साथ सहितम ज्ञान वैराग्य और भक्ति का भी उल्लेख होता है। तत् और ऐसे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से, इसका सुपठन करने से, विचारण परह, इस गहराई से विचार चिंतन मनन करने से, इसको बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास करने से और भक्त्या भक्ति भाव से स्वीकार करने से क्या होता है? विमुच्येत नरह, कोई व्यक्ति पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत को गंभीरता से स्वीकार करने का लाभ ये है। फिर आगे 22वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, भवे भवे यता भक्ति ही पादयो स्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वम नो यतः प्रभो। भवे भवे, जन्म जन्मांतर मुझे भक्ति ही पादयो हो तव जायते तथा कुरुष्व देवेश, कि हे देवेश, हे नाथ, हे प्रभो, आपके चरण कमलों में मेरे हृदय में शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो, ये आप इच्छा पूर्ण कीजिए। जन्म जन्मांतर से, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा भी नहीं चाहते हैं सुत गोस्वामी, केवल हमें आपके चरण कमलों में शुद्ध भक्ति चाहिए। और फिर 23वां श्लोक जो इस अध्याय का और संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनास तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम, मैं नमन करता हूं श्री हरि का जो कि परम सत्य हैं, और जिनके पवित्र नामों का संकीर्तन करने से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, और प्रणामो प्रणामः प्रणाम करने से जिनको दुख शमनः हमारे संपूर्ण दुखों का शमन होता है, तो ऐसे श्री हरि के चरण कमलों में मैं नमन करता हूं। इस तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवत की समाप्ति होती है इस श्लोक से। वैसे तो श्रीमद् भागवत के हरेक स्कंध में, हरेक अध्याय में भागवत की महिमा का गान तो होता ही है, और ये तो बहुत बड़ा विषय है अपने आप में। तो आज इस अध्याय के संक्षिप्त रूप में चर्चा करने से पुनः हमारे मन में वो निष्ठा जागृत हुई है कि ये श्रीमद् भागवत कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इस भागवत का श्रवण करना और कीर्तन करना, इसको गंभीरता से समझने का प्रयास करना ही हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस ग्रंथ को यदि हम अन्यों को भेंट दें तो जो लाभ हमें मिल रहा है वो अन्यों को भी मिलेगा। आज श्रील प्रभुपाद जी के संन्यास दीक्षा का दिवस है, इसी तिथि पर, आज नहीं भाद्र पूर्णिमा के दिन, भाद्र पूर्णिमा के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया था। जैसे कि आप सबको पता है, जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रथम दो स्कंदों के अनेक प्रतियां साथ में ली थी, अपने बक्से में ऐसे दो स्कंद भरे हुए थे, क्योंकि केवल इन दो स्कंदों का अनुवाद वो कर पाए थे उस समय तक, और जितने भी प्रतियां साथ में ले जा पाए वो ले गए उनके साथ में। तो फिर किसी ने उनसे एक बार पूछा था कि आप अमेरिका जा रहे हैं जलदूत में आगे यात्रा करने के थोड़े पूर्व, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम जा रहे हैं, और मैं केवल श्रीमद् भागवत के साथ में जा रहा हूँ। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का उद्देश्य था कि वहाँ जाकर श्रीमद् भागवत का उपदेश अमेरिका के और विश्व के अन्य देशों के लोगों तक पहुँचाना। तो श्रीमद् भागवत को केवल पढ़ना और सुनना इतना ही पर्याप्त नहीं है, हमें चाहिए कि हम इस श्रीमद् भागवत को बांटें, इसका वितरण करें, और विशेष रूप से भाद्र पूर्णिमा के दिन जो 2 सितंबर को है, बुधवार को, आने वाले बुधवार को, उस दिन पर यदि हमने ये भागवत का भागवत ग्रंथ संपूर्ण जो सेट है पहले से 12वें स्कंद तक हमने भेंट में यदि दिया किसी को, भले सोने का सिंहासन हमारे पास ना हो कोई बात नहीं, लेकिन यूं ही श्रीमद् भागवत को भेंट देने में हमें बहुत लाभ मिलेगा, परम गति की प्राप्ति होगी, ये आश्वासन सूत गोस्वामी दिलाते हैं। और जो हमसे ये भेंट स्वीकार करेंगे उनको भी कितना लाभ होगा। कल्याणकारी जो प्रयास चल रहा है सारे समाज में, उससे जो लाभ लोगों को प्राप्त होता है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसे कल्याणकारी कार्यों का लाभ थोड़े समय तक रहता है। हम किसी को भोजन देते हैं फिर से वो व्यक्ति भूखा हो जाएगा, हम किसी की बीमारी को ठीक करते हैं वो फिर से बीमार पड़ जाएगा, हम किसी गरीब व्यक्ति को पैसे देते हैं फिर से उसे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो जितने भी कल्याणकारी कार्य है यहाँ पर समाज में वो सही कल्याण प्रदान नहीं कर पाते हैं, परंतु यदि हम श्रीमद् भागवत को दें उनको और भागवत के द्वारा हरिनाम को दें और शुद्ध कृष्ण भक्ति को दें तो फिर हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और उनका भी जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये भाद्र पूर्णिमा का दिन 2 सितंबर को है, तो ये प्रवचन आज हमने क्यों किया, क्योंकि आपको तैयारी करने के लिए थोड़े दिन मैं देना चाहता था। तैयारी किस लिए, ताकि आप सोच लें कि आपको ये भागवत ग्रंथ का दान भेंट रूप में देना है किसी को, आपके कोई रिश्तेदार होंगे, आपके कोई सगे संबंधी होंगे, कोई मित्र होंगे, व्यवसाय में आपके कोई ग्राहक होंगे, तो वैसे तो तरह तरह के भेंट आप देते रहते हैं व्यवसाय में और सामाजिक जीवन में भी, तो क्यों ना श्रीमद् भागवत का ग्रंथ भेंट में दिया जाए उनको, तो ताकि आप थोड़ी तैयारी कर सकें और आप सोच लें कि किन को भेंट देना है, और यहाँ पर आप मंदिर में अनुपम भेंट हमारे जो स्टॉल है वहाँ पर आके आप श्रीमद् भागवत सेट ले सकते हैं, और यहाँ पे किस तरह की योजना की गई है वो भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो यदि आपको संपूर्ण जो राशि है उसकी एक बार में आप नहीं दे पाते हैं, तो आप नागेंद्र प्रभु के संपर्क में रहिए ताकि वो आपको बताएंगे कि यहाँ क्या योजना की गई है ताकि आप भागवत को दे सकें। समय समय पर थोड़ा थोड़ा पैसा दे के भी आप संपूर्ण श्रीमद् भागवत को इस तरह से दान में दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा दिन है, श्रील प्रभुपाद जी अवश्य आपके ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत का दान अर्थात कृष्ण भक्ति का दान। तो आप सबसे निवेदन है, आप इस दिन को गंभीरता से लीजिए और प्रयास कीजिए श्रीमद् भागवत को अन्यों को देने के लिए, चाहे आप बेलगाम में रह रहे हों या विश्व के किसी भी स्थान में रह रहे हों और फेसबुक से आप जुड़े हुए हों हमारे साथ, तो कृपया अपने अपने स्थानों में भी आप इस दिन पर विशेष रूप से आप श्रीमद् भागवत का वितरण कीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि साल में केवल एक दिन पर आप ऐसा प्रयास करेंगे, अन्य दिनों पर आप प्रयास अवश्य कीजिए, परंतु विशेष रूप से इस दिन पर आप श्रीमद् भागवत का वितरण करने के लिए प्रयास पूरा कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।